ये रात्रि क्लास है 19/9/1966। बच्चे कोई हर्जा नहीं है। 80 जन्म कौन से, चौरासी, पचासी, सवा चौरासी, ऐसे ऐसे कहते रहते हैं ना। चौरासी तो गोया जाता है, गाया ही जाता है, क्योंकि चौरासी तो है ही। गाया जाता है चौरासी का चक्कर। बाकी ये है तुम्हारा जन्म, तो इसको कहा ही जाता है गुप्त जन्म। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है इनकॉग्निटो, जो तो सभी बच्चे जानते हैं कि वो हमारा बाबा है। तो देह अभिमान होने के कारण बच्चे इतना समझते नहीं है। देखो ये मीठी पॉइंट्स है ना, कहते हैं सभी आपस में भाई भाई, सभी ब्रदर्स हैं, तो ब्रदरहुड हो गया। ऐसे नहीं कहते हैं कोई फादरहुड हो गया, नहीं। अगर फादरहुड होता तो फादर को कोई याद ही नहीं करता। ब्रदरहुड है, हम सब भाई भाई हैं आत्माएं, इसलिए भाई भाई बाप को याद करते हैं। तो आत्मा भी गुप्त है ना बच्चे, तो ये तुम्हारा जन्म भी गुप्त है, बाप भी गुप्त है, पढ़ाने आया है गुप्त, और किसको ये मालूम ही नहीं है कि निराकार बाप आकर के पढ़ाते। उसमें गीता में जो भूल कर दी है श्री कृष्ण भगवान वाच, और भगवान कहते हैं मैं तुझे राजयोग सिखलाता हूं, और फिर अभी यज्ञ की ये बात हुई है, फिर कहते हैं इस यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। अभी मुख से के कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ से महाभारत की विनाश ज्वाला निकली, अभी रुद्र कृष्ण को तो नहीं कहा जाता है। अभी ऐसे तो नहीं है भगवान रुद्र कहे اور پھر کہیں شیو کے لیے کہ اس کے اس یگ سے بنا جوالا نکلی. اور یگ میں چاہیے بھی برہمن. تو کرشن تو ہو ہی نہیں سکتا ہے بچے. تو گیتا میں تم بچوں کو مشکلات ہوتی ہے نا سمجھنے کی, تو ان کو سمجھاؤ کہ تم کہتے ہو بھگوان واچ, پھر وہ کہتے ہیں اس رودر گیان یگی سے وناش والا پرجولت ہوئی. اب رودر تو باپ کا نام ہے, وہ تو باپ کا نام لے لیتے ہیں. نراکار رودر گیان یگیہ اس میں یہ وناش والا مہابھارت پرجولت ہوا جس میں یہ سبھی انیک دھرم وناش ہو جائیں گے. یہ جو دھرم میں استھاپن کر رہا ہوں وہ پھر ایک ہی دھرم ستیوگ میں ہوگا. تو یہ تو بچوں کو بالکل سہج ہے, کس کو بھی سمجھانے میں سہج ہے. اور ایک بات تم نے بہت اچھی سمجھائی, اور جب بہت اچھا ہو جائے گا تب یہ تھر تھرا مچے گا, کیونکہ ساری دنیا میں ہے کرشن بھگوان واد. ہاں اب تم کو معلوم پڑتا ہے کہ بھگوان واد, ابھی بھگوان تو یہاں ہے نا, اور ان کا اگنیٹو ہے. تو تمہارا بھی یہ جنم گپت ہے, بھگوان بھی گپت ہے. باپ کہتے ہیں میں گپت ہوں, اس شریر میں گپت ہوں, اور پھر کہتا بھی ہوں کہ یہاں کوئی بھی دھرم والا ہو, سکھ ہو, مسلمان ہو, پارسی ہو, کیونکہ یہ باپ آتماؤں کو پڑھاتے ہیں. یہ باپ کوئی شریر کو نہیں دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ باپ تو سب کا ہے نا, سبھی دھرم والے دیہ دھاری ہیں نا, مسلمان ہو, پارسی ہو, کوئی بھی ہو, سبھی کہتے ہیں. اور باپ کہتے ہی ہیں بچوں کو دیکھے جو بھی تمہارے سبھی دھرم ہیں میں پھلانا ہوں, تیرا ہوں, یہ ہوں, یہ سبھی دیہ کے دھرم ہیں. تب تو گیتا میں کہا ہے سرو دھرمان پریتیجیہ, سب دھرموں کو تیاگ کر کے میری شرن میں آ جا. ان دھرموں ان دھرم کے استھاپکوں کی شرن میں جانے کی بات نہیں ہے, ابھی میری شرن میں آ جا. کیونکہ باپ تو آتماؤں کو پڑھاتے ہیں, باپ کوئی شریر کو نہیں دیکھتے ہیں. क्योंकि बाप तो ये सबका है ना। तो बोलता है कि सिर्फ देही के धर्म में रहो, आत्मा के धर्म में रहो, और देह के जो भी धर्म हैं, ये मामा काका बाबा फलाना फारसी ये सभी छोड़ दो। अभी आत्मा को तो पारसी कोई नहीं कहेंगे, कोई गुजराती नहीं कहेंगे आत्मा को, कोई सिख नहीं कहेंगे। तो बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे तुम अपन को आत्मा समझो, न सिख समझो न पारसी समझो, बाकी देह के जो सभी धर्म हैं उन सब धर्मों को त्याग दो। इस संगम युग की बात है तो इस समय में सब देह के धर्मों को त्याग दो। क्यों? क्योंकि अभी हम तुमको पढ़ाते हैं, पवित्र बनाते हैं, शिक्षा देते हैं, मां एकम याद करो, तो सभी आत्माओं को कहते हैं। इसमें देह का धर्म बोलता है छोड़ दो ये सभी, भले कोई भी हो, कोई भी धर्म का हो, क्योंकि वो धर्म तो है हद के, उन धर्मों के धर्म पिताएं भी हद के बाप हैं, कोई करोड़ के बाप हैं, कोई 200-250 करोड़ के बाप हैं, क्रिश्चियंस जैसे क्राइस्ट, कोई मुस्लिम है, बौद्धी हैं, ये सभी धर्म पिताएं हद के बच्चों के बाप हैं ना। मैं तो बेहद का बाप हूं, जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं सब का बाप, तो वो तो हद के धर्म हुए। अभी देखो जैसे ये सिख धर्म आया वो यहां तो इनको ना सिख लोग बोलेंगे, तुम कहां दूसरे धर्म में जाते हो, ब्रह्मा कुमारियों के पास क्यों जाते हो? अरे भाई ब्रह्मा कुमारियों का धर्म क्या है? ब्रह्मा कुमारियों को कोई धर्म तो है ही नहीं। धर्म क्या है ब्रह्मा कुमार कुमारियों का? ब्राह्मण धर्म है, शब्द से ही कहने से ही पता चलता है। जैसे मुस्लिम धर्म मोहम्मद से, बौद्ध धर्म बुद्ध से, क्रिश्चियन धर्म क्राइस्ट से है, धर्म पिता से धर्म आता है ना। तो ये ब्रह्मा कुमारियां भी कहां से आती हैं? ब्रह्मा से आती है तो ब्राह्मण धर्म हुआ ना। की वाणी का दूसरा पेज। अभी उन लोगों को ये नहीं मालूम है, कोई ब्राह्मण धर्म में भी जाते हैं, ये पराये धर्म में क्यों जाते हो? इन्हें ब्रह्मा कुमारियों के पास क्यों जाते हो? ये तो दूसरा धर्म है, समझ कुछ भी नहीं है। नहीं तो ये है तुम ब्राह्मण धर्म के, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा के जो आकर के बच्चे बनते हैं वो तो ब्राह्मण ही ठहरेंगे ना। और कृष्ण तो यज्ञ नहीं रचते हैं, है? ये तो यज्ञ रुद्र यानि यज्ञ है। और बाप फिर कहते हैं क्यों होती है विनाश वाला? क्योंकि तुम ये पुरानी दुनिया को खत्म कर रहे हो ना। तो ये सभी कोई लड़ाई में थोड़े ही मरते हैं? नहीं नहीं, ये तो नेचुरल कैलेमिटीज मुख्य है बच्ची। उस नेचुरल कैलेमिटीज में मरते हैं, अरे ये बॉम्ब्स कहां तक फेंकेंगे इतने सभी? नहीं, ये तो सभी अर्थक्वेक में मरेंगे। ये नेचुरल कैलेमिटीज होगी तो बाप बैठ करके समझाते हैं। और यहाँ कोई भी धर्म वाला देखो, पारसी भी हो मुसलमान भी है, पुणे की तरफ में मुसलमान भी है, और वहां मुसलमान ही अपना क्लास चलाते हैं। कोई ब्राह्मण जाती है सिखला करके चली जाती है तो वो आपस में मिलकर के क्लास करते हैं। आने वाले थे यहाँ, कोई कारण से बाबा ने उनको थोड़ा उस समय के लिए बंद कर दिया था कि तुम मना बताओ, आएंगे तो है ये राजस्थानी मुड़ा मुसलमानों के बरखिलाफ बात ना, तो वो लोग नहीं तो समझेंगे, नहीं समझेंगे। पूछेंगे हमारे पास तो रजिस्टर रखा हुआ है, वो आकर के लिखेंगे पहले पहले। और अगर यहाँ पूछते हैं कभी कभी मालूम तो पड़ जाता है, तो बोले इनके पास मुसलमान क्यों आते हैं? ये तो कोई गुप्त वेश में, कोई ये लोगों को इनके साथ कनेक्शन तो है नहीं, क्योंकि पहले से ही ये सब लोग मुझते हैं। ये कौन है, कौन सा धर्म है? आखिर इनमें कौन है समझ में आ जाएगा, अभी समझ में किसी को नहीं आता है। बाबा सिर्फ थोड़ी वाणी चलाई थी तो भी भाग करके आया। دو تین سپرنٹینڈنٹ آئی پوچھنے کے لیے کہ آپ چین کی طرف کے ہو، کمیونسٹ ہو، سامیہ وادی ہو، کیا ہو؟ اور ہمارے پاس تو بڑی کڑی آئی ہے کہ یہ کون ہے، نہیں تو آج کل تو ہے نا، بغیر پوچھے ڈالو حال فی الحال، تو کسی نے کہا 5 ورش سے کم چھوٹے بچوں کو، ابھی تو تم دیکھو بچے ہو، بیٹھے ہو، تمہارا جنم ہی گپت ہے، کس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کرشن کا مکھ ڈالنے سے کس کو معلوم نہیں پڑتا؟ تو یہ بچے جانتے ہو نا کہ ہم آتما شیو بابا کے سامنے بیٹھے ہیں، تو سب ہم آتما ہیں، یہاں کوئی بھی آ کر کہتے ہیں نا، پارسی ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، آج سماجی ہو، فلانا ہو، کوئی بھی ہو، اپن کو تم کو سمجھانا بھی ایسے ہی، دوسروں کو سمجھانا ہے، تو یہاں کوئی دھرم بھائی، کوئی دھرم والا، کوئی بات ہی نہیں ہے یہاں تو۔ یہاں بابا کہتے ہیں دیکھو تم بھول جاتے ہو، اس سمے میں ان کو سمجھانے کے لیے کہ بابا جو سب کا بابا ہے، تو ہم سبھی بردرس ہیں، ہم سب آتما آتما بردرس کا جو بابا ہے وہ ہم کو کہتے ہیں، وہ بھگوان ہے، ان کو ہم مانتے ہیں، ہے نراکار، جو کہتے ہیں دے کے سبھی دھرم چھوڑو، میں یہ ہوں، میں رانی ہوں، راجا ہوں، فلانا ہوں، آری سماجی ہوں، رادھا سوامی ہوں، فلانا ہوں، یہ سب چھوڑ دو، میں آتما ہوں، یہ سبھی باتیں دیہ کے اوپر پڑتی ہے، اپن کو آتما سمجھ کر کے یہ انتم جنم تمہارا، جبکہ باپ آ کر کے تم بچوں کو یہ پرانا شریر چھڑائے کر کے پوتر بنائے کر کے، پوتر تو ضرور بننا ہے، تم نے بہت پاپ کیے ہوئے ہیں، اس میں بھی نمبر ون پاپ یہی ہے کہ ایک دو کے اوپر کام کٹاری چلاتے آئے، دوسری طرف یہ بھگوان کو گالی دیتے آئے ہو، اتیتھی بھی بنتے ہو، پھر گالی بھی دیتے آئے ہو بھگوان کو، یہ راون کی مت پر تم نے کیا، کیونکہ بچی وہ راون مت ہے اور یہ ہے رام مت، اسے راون مت کیوں کہا اور اسے رام مت کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ وہ انیک سروں سے مت دی جاتی ہے، مت دینے والا مکھ کوئی ایک نہیں ہے، اور یہاں ایک رام کے مکھ سے ہی مت دی جاتی ہے، وہ آتما مقرر ہے رتھ بننے کے لیے، تو یہ باپ ٹھہرا نا، دونوں باپ ہیں، ایک آتماؤں کا باپ اور دوسرا منشیوں کا باپ، کون ہے منشیوں کا باپ؟ رام والیا، تو بچی یہ تم بیٹھے ہو، تم کو بڑی یہاں امنگ آتی ہے، ابھی تم سنمکھ بیٹھے ہو نا، کیوں امنگ آتی ہے؟ تو तुमको वहाँ रहते हो ना, जब अपने घरों में और सेंटर्स में इतना तुमको वो नशा नहीं चढ़ेगा। क्यों है वहाँ इतना नशा क्यों नहीं चढ़ता? क्योंकि वहाँ बाप सन्मुख नहीं है और यहाँ बाप सन्मुख है। इसलिए कहते हैं कि सन्मुख सुना तो फर्स्ट क्लास मुरली, टेप रिकॉर्डर से सुना तो सेकंड क्लास, और कागज से सुना या पढ़ा तो थर्ड क्लास मुरली। तो तुमको वहां जब रहते हो ना, तब अपने घरों में पढ़ते हो, नशा नहीं उतना चढ़ता। यहाँ तो तुम सन्मुख बैठे हो। हम आत्माएं जिस बाप आपको पुकारती थी, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे, और कहते थे बाबा जब आप आएंगे तब हम बलि चढ़ेंगे। आपका ही बनेंगे, आपके सिवाय मेरा और कोई नहीं होगा। ১৯৬৬ की वाणी का तीसरा पेज देखो। अब ये बाप आकर के बताते हैं ना, क्या तुम ऐसे नहीं कहते थे? तो ये तो बाप ही आकर के दुरापा देंगे ना बच्चों को, कि भक्ति मार्ग में तुम ऐसे ऐसे कहते थे। तो फिर दुरापा देते हुए कहते हैं कि बच्चे तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये ड्रामा में नूद है। सो आकर के तुम बच्चों को समझाते हैं, समझा करके फिर तुम बच्चों को कहता हूं कि हम पुकारते हैं ना कि पतित पावन आओ, तो पतितों को पावन करने वाला तो बाप ही ठहरे ना। तो मैं आता हूं ना, युक्ति तो बताऊंगा ना कि अभी पतित इस जन्म में नहीं बनो, क्योंकि ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। और तुम बोलती हो कि हमको पावन दुनिया में ले चलो, तो बाबा कहते हैं हाँ कि चलो, ये जन्म भी पावन रहो और जो तुम पतित बने हो जन्म जन्मांतर है काश बोझा है ना मीठे मीठे बच्चे। देखो बहुत प्यार से समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों। मैं कल पहले भी तुमको ऐसे ही कहा था कि माम एकम यानी मन मना भव, माम एकम याद करो तो तुम्हारा जो ये विकारों का खाद है, ये चांदी का खाद, तांबे का खाद, लोहे का खाद, कौन कौन से युगों में पड़ा है? त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में लोहे का खाद, वो सोने में भी ऐसे खाद पड़ती है ना। तो ये भी तो वंडर है ना कि बरोबर आत्मा पवित्र, वो ही पवित्र आत्मा सो अपवित्र, तो इस अपवित्र आत्मा में क्या पड़ गया है? खाद पड़ गई। कौन सी खाद पड़ गई? विकारों की। द्वापर में कहां से विकार आ गए? अच्छा, देवान के विकार आ गए द्वापर, त्रेता में है, त्रेता में आ गई खाद। सतयुग आदि से ही खाद आ गई। कृष्ण ने जन्म लिया और खाद आ गई है? नहीं, खाद बाहर से आती है या अंदर से आती है? सोने में खाद डाली गई, सोने का मिसाल दिया ना, तो सोने में जो खाद पड़ती है वो सोने के अंदर बाहर से डाली गई या सोने के अंदर ही थी? तो ये भी बल कृष्ण का जन्म हुआ, कृष्ण के बाद, कृष्ण की जो डायनेस्टी है कितने कला संपूर्ण? 16 कला संपूर्ण। वो 16 कला संपूर्ण डायनेस्टी के बाद दूसरी डायनेस्टी में जो भी आत्माएं आएंगी वो कम कलाओं की आएंगी या पूरी 16 कला संपन्न आएंगी परमधाम से? तो कम कलाओं की जो आत्माएं आई उनका संग का रंग नहीं लगेगा पहले वाली आत्माओं को? तो जो संग का रंग लगता है वो ही खाद पड़ जाती है। ऐसे ही त्रेता में जो आत्माएं उतरती हैं वो सोने जैसी तो होती नहीं सच्ची, वो तो चांदी जैसी होती है, उनकी वैल्यू कम होती है। तो चांदी जैसी आत्माएं संग के रंग में उतरती है देरों की ढेर तादाद में, क्योंकि सतयुग में तो दो ही करोड़ होते हैं और त्रेता में कितने उतरते हैं? है? 1250 वर्ष में ही कितने उतरे? 8 करोड़ उतर पड़े, 4 गुनी आत्माएं और आ गई। तो उनका संग का रंग लगता है ना, है? तो ऐसे ही हर युग में ऊपर से आने वाली आत्माएं, एक तो उनकी वैल्यू कम, उनमें दुर्गुण ज्यादा हैं, जन्म जन्मांतर के दुर्गुण हैं। बल बाप आते हैं सभी आत्माओं के दुर्गुणों को हटा देते हैं, फिर भी वो सब 16 कला संपूर्ण थोड़े ही बन जाती। तो वो आत्माएं जो आकर के थोड़ी आत्माओं को अपने संग के रंग में खींच लेती है, हैं? हाँ,
वो तो 16 कला के होंगे।
हाँ जी, उनकी चौथाई कला कम होगी ना,
तो वहीं से वो उतरना शुरू हो जाए।
हाँ, जो पहला पीढ़ी पूरी हुई तो दूसरी पीढ़ी की जो उतरेंगे वो तो कम कलाओं वाले आएंगे, तो पहली पीढ़ी वालों के साथ मिक्स होंगे कि नहीं? हैं? मिक्स होंगे, संघ का रंग लगेगा कि नहीं? लगेगा। एक परमपिता परमात्मा शिव ही ऐसा है जिसको संघ का रंग नहीं लगता है। और भी एक विशेष बात है, परमपिता परमात्मा के सिवाय जो कृष्ण के जन्म से पहले ही जो आत्माएं नीचे उतरती हैं, उनमें पहली पहली आत्मा कौन है? हैं? राम वाली आत्मा, राम और सीता वाली जो आत्माएं आती हैं, वो 16 कला संपूर्ण है या 16 कला संपूर्ण से भी ऊंची स्टेज वाली है? ऊंची स्टेज वाली है, क्योंकि राधा कृष्ण की तो नीची स्टेज है, क्योंकि वो आंखों से सुख लेते हैं, आंखों से सुख भोगते हैं राधा कृष्ण, और बच्चों की पैदाइश होती है। उनको जन्म देने वाले तो आंखों से भी सुख नहीं भोगते। कैसा सुख भोगते हैं? हैं? वाइब्रेशन का सुख भोगते हैं। दूर ही दूर रहेंगे तो संग का रंग लगेगा है? नहीं लगेगा। तो ये दूर रहना उन्होंने कहां से सीख लिया है? संगम युग में क्या सिखाया बाप ने? इस देह को याद ही नहीं करना, देह के पदार्थों को याद ही नहीं करना, देह के संबंधियों को याद ही नहीं करना, देह के धर्म को भी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये भी याद नहीं करना, एकदम देह से परे चले जाना आत्मिक स्टेज में। तो जो आत्मिक स्टेज में रहने वाली आत्माएं हैं वो नंबरवार होंगी या एक जैसी होंगी? नंबरवार होती। जो आत्मा जितनी जास्ती आत्मिक स्टेज में टिकेगी उतना वो परम धाम से जल्दी सृष्टि पर आएगी, और आत्मिक स्टेज में उतना टिकने वाली नहीं होगी तो थोड़े समय के बाद आएगी। तो ये अंतर पड़ जाता है पुरुषार्थ में। वही आत्माएं तो बहुत पावरफुल हो जाती है व्याधि की परिपक्वता के कारण। कौन से वंश वालों में? सूर्य वंश वालों में। इतनी परिपक्व हो जाती है कि जब द्वापर युग शुरू होता है तो उनके ऊपर जो इस्लाम धर्म की आत्माएं उतरती हैं उनका कोई भी संग का रंग नहीं लगता, और उन्होंने ही कुछ आत्माएं पुरुषार्थ न करने के कारण इतनी कच्ची हो जाती हैं कि जब इब्राहिम उतरता है तो फटाक से संग के रंग में आ जाती। चलो संग के रंग में कोई न भी आए, जैसे बीज रूप आत्मा है तो संग के रंग में आती नहीं है। भले संग के रंग में नहीं आती है फिर भी उनको मोह का प्रभाव पड़ जाता है। जैसे सिद्धार्थ है तीसरे नंबर का धर्म पिता महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ में प्रवेश करता है, करता है ना? वो सिद्धार्थ है, तीसरे नंबर का सतयुग का नारायण है। उस नारायण में ऊपर से आने वाले धर्म पिता महात्मा बुद्ध ने प्रवेश किया। सिद्धार्थ का जो पिता है वो तो बीज रूप आत्मा है, और फिर उसका बाबा भी तो होगा कोई है? पहले तो ऐसे थोड़े ही के बाप के सामने और बाबा के सामने ही बच्चे मर जाए। बाबा और बाप, ग्रैंडफादर और फादर जिंदा रहते थे ना, तो उनके जिंदा रहते रहते बच्चा जो है दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गया, वो बीज रूप आत्मा कन्वर्ट नहीं हुई। न बाप कन्वर्ट हुआ न बाबा कन्वर्ट हुआ। न कन्वर्ट होने के कारण उन्होंने उनको निकाल दिया, देश निकाला दे दिया महात्मा बुद्ध को, सिद्धार्थ को। उधर चीन जापान में जाकर के उन्होंने बड़ी शोहरत प्राप्त की, दुनिया के एक बड़े हिस्से को उन्होंने बौद्ध धर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो जो बाप है और बाप के बाप ग्रैंडफादर है, उनकी आत्मा की रग उस बच्चे की तरफ जाएगी या नहीं जाएगी? है, मेरा बच्चा मेरे खून से पैदा हुआ, इतना महान बन गया कि दुनिया के बड़े से बड़े हिस्से को कन्वर्ट कर दिया और मैंने उसे निकाल दिया। ये भाव पक्का होता रहता है।
सिद्धार्थ तो बाहर गए नहीं, सिद्धार्थ तो भारत में
है। महात्मा बुद्ध को बाहर निकाला गया, वो सिद्धार्थ में ही तो प्रवेश करता है। जिसमें प्रवेश करता है उसी को तो निकाला गया। और हैं, ये हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री किसने लिखी है, हैं, मनुष्यों ने लिखी है। धर्म पिता अपने धर्म खंड में न जाए ऐसा हो सकता है, हैं, जरूर जाएगा। हाँ, तो वो आत्माएं जो उनके बाप और बाबा के रूप में थी, वो उस जन्म में तो कन्वर्ट नहीं हुई, विरोध किया, लेकिन अपने मोह की तीव्रता के आधार पर वो दो चार जन्म के बाद जब बौद्ध धर्म की संख्या काफी बढ़ जाती है तो उस बौद्ध धर्म में स्थापना करने के लिए उन आत्माओं को जाना पड़ता है, बौद्ध धर्म में जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि मृत्यु के समय उन्हें वो बच्चे अंतमते सोगते हो जाती। तो देखो, कोई कोई आत्माएं तो ऐसी होती हैं, इतनी कमजोर पड़ जाती हैं कि द्वापर के आदि होते ही इब्राहिम उनमें प्रवेश कर जाता है। ब्राह्मण सो देवता बने हुए देव आत्माओं में ही प्रवेश करेगा ना, और प्रवेश होने के बाद वो आत्माएं खदेड़ी जाती है अरब देशों की ओर, चली जाती है मुस्लिम कंट्रीज में, वहां जाकर के वो भी विचार फैलाती है, उनमें संस्कार है भी विचार फैलाने के। ज्ञानेन्द्रियों का सुख लेने के संस्कार उनके अंदर थोड़े ही है, किनके अंदर, इस्लामी आत्माओं के अंदर। वो वहां जाकर के तीव्र गति से अपनी जनसंख्या बढ़ाती है, ऐसे ऐसे नियम बनाती है, भाई बहनों में भी शादी कर देते हैं। जब बहुत संख्या बढ़ जाती है तो उनको जो जन्म देने वाले माता पिता हैं, जो बीज रूप आत्माएं थी जिन्होंने खदेड़ा था, वो भी वहां जाकर के जन्म लेते हैं और उनकी राजाई स्थापन करते हैं। तो इससे ये बात साबित हुई कि संगम युग में जितना जिसने याद की पावर भरी है उतना वो आत्मा परिपक्व स्टेज में जन्म जन्मांतर रहेगी, कम पावर भरी है तो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती रहेगी। तो देखो, जो अपवित्र आत्मा है उसमें क्या पड़ गया भाई, गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, अभी आयरन एज में आ गई, तो क्या पड़ गया, खाद पड़ गई, विधर्मी आत्माओं का संग का रंग लग गया। अभी आयरन एज से हम गोल्डन एज में कैसे जावे, कैसे का जवाब क्या हुआ, खराब खराब खाद पड़ गई तो हम कॉपर एज से भी नीचे उतर करके आयरन एज में आ गए, एकदम काले बन गए। अब क्या करें, कैसे करें, जो गोल्डन एज में चले जाए, हैं, हाँ, क्योंकि उस दुनिया में ऐसी एक भी मनुष्य आत्मा नहीं, धर्म पिताएं भी ऐसे नहीं है जिनको संघ का रंग न लगता हो। सबको संघ का रंग लगता है, सब नीचे गिरते हैं। एक परमपिता परमात्मा शिव ही ऐसा है, आत्माओं का बाप, जिसको संघ का रंग नहीं लगता है। और उस आत्माओं के बाप को गॉड फादर के रूप में सभी धर्म वाले मानते भी है, भारत में भी मानते हैं निराकार को, भारत में तो निराकार साकार दोनों को मानते हैं, विदेशी निराकार को मानते हैं लेकिन साकार को नहीं मानते, क्योंकि साकार के रूप में उनकी छाप जन्म जन्मांतर की पड़ी हुई है धर्म पिता की, तो जिसकी छाप पड़ी हुई है उसको कैसे छोड़ देंगे। इसलिए बोला है जो अपने धर्म के पक्के होते हैं वो कभी भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो पूछा, हम गोल्डन एज में कैसे जावे, तो चाहिए उसके लिए वो योगाग्नि। कौन सी योगाग्नि है? सिर्फ याद नहीं, याद तो बाप को अपने अपने धर्म पिताओं को सभी करते हैं, क्रिश्चियन से भी क्राइस्ट को याद करते हैं। ऐसी योगाग्नि, इतनी तीव्र योगाग्नि होनी चाहिए जिसमें देह का याद का नाम निशान भी न रह जाए, वो याद की यात्रा चाहिए। जैसे सोना है तीव्र अग्नि में पिघलता है या धीमी अग्नि में पिघलता है, बहुत तीव्र अग्नि होती है उसमें पिघलता है, तो फिर इनको याद की यात्रा अक्षर बहुत अच्छा है। यात्रा अक्षर अच्छा है क्योंकि बाबा को याद करते करते तुम अपने घर चले जाएंगे बाबा के पास। तो देखो बाप समझाते हैं कि तुम बच्चों ने आधा कल्प भक्ति की है, ये आधा कल्प भक्ति किसके लिए की है? हाँ, उसी को पाने के लिए जिसको संघ का रंग नहीं लगता है, और जितने भी धर्म पिता हैं सबको संघ का रंग लगता है, उनके संघ के रंग से हम नीचे ही गिरते आए, सभी धर्म वाले नीचे गिर गए, सभी धर्म वाले तमो प्रधान बन गए। एक शिव बाप ही है जो कभी पतित नहीं बनता, वो पतितों को भी पावन बनाने वाला, भगवान के मिलने के लिए हमने भक्ति की है, अभी मैं आया हुआ हूँ, तुमको सहज सहज रास्ता बताता हूँ, क्योंकि जानता हूँ तुमने बहुत मेहनत की है, जन्म जन्मांतर मेहनत की है, यज्ञ किए, तप किए, दान किए, शुरू से लेकर के करते आए, पहले अब भी बिचारी भक्ति की थी, एक शिव की पूजा करते थे। क्या कहा? किसकी पूजा करते थे? एक शिव की पूजा करते थे। एक शिव की पूजा कैसे करेंगे? शिव तो निराकार का नाम है, शिव तो बिंदी का नाम है। बाप कहते हैं मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, वो कभी बदलता ही नहीं, तो बिंदी की पूजा कैसे करेंगे? पूजा साकार की जाती है या निराकार की जाती है? फिर एक बिंदी की पूजा कैसे करते थे? शिवलिंग का जो मंदिर में आकार रखा हुआ है वो आकार ही भी नहीं कहेंगे, क्योंकि लिंग तो है ना, बड़ा रूप है ना, और उसमें सोमनाथ मंदिर में यादगार में हीरा जड़ा हुआ था, तो किसकी यादगार थी? हीरा, हीरा है शिव की यादगार, और जिसमें जड़ा हुआ था मुकर्रर रत की यादगार में वो था है? वो था प्रजापिता का पुरुषार्थी संपन्न रूप कौन सा लिंग संपन्न रूप क्यों कहे क्योंकि हाँ उसकी ऐसी स्टेज बन गई कि हाथ पांव नाक आंख कान कोई भी स्थूल कर्मेंद्रिय या ज्ञानेंद्रियों की याद नहीं रहती सिवाय एक ज्योति बिंदु के। तो ज्योति बिंदु का बड़ा रूप बना करके हम पूजा करते थे एक की ही करते थे अनेकों की पूजा नहीं करते थे। पीछे तुम देवी देवताओं की पूजा करने लगे क्या अंतर पड़ गया है? वो एक से बुद्धि हट गई और अनेक देवी देवताओं में बुद्धि लग गई। यहाँ शूटिंग कैसे होती है यहाँ रिहर्सल होती है कि नहीं कैसे है? वो निश्चय निश्चय तो अभी भी आता जाता रहता है नहीं आता जाता रहता है? हाँ एक बार पक्का निश्चय बैठ गया ज्ञान में आ गए भट्टी करने के बाद बुद्धि शुद्ध निर्मल बन गई जो बोला है तुम्हारी आत्मा की सारी कट उतरने पर जब बेसिकली सारी कट उतर जाएगी तो तुम डायरेक्ट बाप से सीखेंगे। तो 76 के बाद जो भी एडवांस में आते हैं उनका क्या होता है, है? डायरेक्ट बाप मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है बुद्धि में विश्वास बैठता है निश्चय बैठता है ये हमको बाप मिला। तो जो निश्चय बुद्धि बनते हैं उस समय विजयते उनकी विजयते की शूटिंग होती है विकारों पर विजय प्राप्त करने की शूटिंग होती है। जो विजय प्राप्त करने की शूटिंग होती है वो सतयुगी जन्मों की शूटिंग होती है। फिर क्या करते हैं फिर सूर्यवंश से उतर करके कहाँ पहुंच जाते हैं? चंद्रवंश त्रेता शुरू हुआ और किसका राज्य चलता है? चंद्रवंशियों का राज्य चलता है सूर्यवंशियों का राज्य नहीं। तो जरूर कोई न कोई चाहे ज्ञान चंद्रमा चाहे ज्ञान चंद्रमा को फॉलो करने वाले ऐसी आत्माओं के प्रभाव में आ जाते हैं और उनके प्रभाव में आने के कारण फिर हमको संग का रंग लग जाता है। माम एकम की जगह किसको याद करने लग पड़ते हैं? अनेकों को याद करने लग पड़ते हैं। तो देखो पहले तुम एक की अभिविचारी पूजा करते थे और बाद में हाँ दूसरे देवी देवताओं की भी पूजा की है। पीछे अभी देखो मच्छ की भी पूजा करने लग पड़े कच्छ की भी पूजा करने लग पड़े हाँ? ये कौन है ये कच्छ मच्छ कौन है? जानवर तो है माने जिनमें जानवरियत का स्वभाव है तो ब्राह्मण लेकिन स्वभाव संस्कार जानवरियत का है। ऐसे कच्छ कच्छ माने कछुआ कछुआ क्या करता है कछुआ में कौन सा अंग बहुत मजबूत होता है? पीठ बड़ी मजबूत होती है। कैसे मजबूत बन गई है ये पीठ कैसे मजबूत बन गई अरे भाई इससे मत टकराओ इसकी पीठ पर प्रधानमंत्री का हाथ है। तो उस कछुए की पीठ पर किसका हाथ था? शिव बाबा का। शिव बाबा कछुओं पछुओं की पीठ पे हाथ रखता है है हाँ। वेद की एक ऋचा में कहा है रावण और ब्रह्मा, वैसे भी देखा जाए तो जो रावण का चित्र है उसमें दस सिरों के ऊपर कौन सा सिर है, वो किसकी यादगार है, है? गधे का जो चित्र है वो किसकी यादगार है, है? हाँ। गधा किसके कंट्रोल में चलता है, है? अरे गधा किसके कंट्रोल में चलता है, धोबी के कंट्रोल में चलता है ना, धोबियों के घर में भी गधा होता है। प्रजापतियों का नाम सुना है, है? कुम्हार घड़े वगैरह बनाने, उनके घर में भी गधे होते हैं। तो किसके डंडे के नीचे चलता है, है? किसी के डंडे के नीचे चलता है कि नहीं, है? किसके नीचे चलता है, किसके डंडे के नीचे, कुमार या धोबी के डंडे के नीचे चलता है। अब ब्राह्मणों की दुनिया में वो धोबी कौन है, कपड़ों को धोने वाला, वो तो तुम्हारी समझ की बात है, लेकिन कपड़े पकड़े जाएंगे तो क्या बिंदी बाबा पकड़ेगा, है? कपड़े स्थूल चीज है या सूक्ष्म, स्थूल चीज है। चैतन्य कपड़े भी स्थूल है और जो जड़ कपड़े वो भी स्थूल, तो उनको पकड़ करके धोने वाला साकार होगा या निराकार, साकार होगा। और जो कुमार के घर में गधा है, उस गधे को कंट्रोल करने वाला जो प्रजापति कहा जाता है, वो भी साकार। दुनिया में आज तक भी एक कहावत चल रही है, क्या? नहीं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, बड़े बड़े ऑफिसर वगैरह या बड़े बड़े साहूकार वगैरह, वो कहते हैं कर्म ही पूजा है। क्या कहते हैं? कर्म ही पूजा है। और अपने ऑफिस में वो लिख करके टांग देंगे बोर्ड पर, और उस पर लिख देंगे कर्म ही पूजा है। ऑफिसर थोड़ा बाहर चला जाए और मोटी कलम से उसमें लिख दो गधे का, तो बात सही है या गलत है, गधे का कर्म ही पूजा है या नहीं, है? कैसे
है? सारा दिन काम करता रहेगा।
हाँ, गधा सारा दिन काम करता है और रात को भैंस की सूखी घास बची हुई झूठी खा करके सो जाता है। ये नहीं देखता ये झूठी घास है, किसी की खाई हुई है बची, उसे खाने से मतलब, खा के सो जाता है। तो इससे ज्यादा कर्म कोई है, ज्यादा करने वाला कोई होगा, है? इतनी निष्ठा से कर्म करता है और रोज करता है, तो गधे का कर्म ही पूजा है, ये फिकरा अच्छा है या गलत है, है? अच्छा नहीं है। क्यों? अभी तो बताया वो बेचारा सारा दिन काम करता है और काम करने के बाद रात को सूखी घास खा करके, और ये न कैंचित संतुष्ट है, जो गीता में बताया है, जो जो कुछ भी मिले उससे संतुष्ट हो जाए, है? क्या
बुद्धि नहीं है?
बुद्धि नहीं है, बुद्धि तो दुनिया में किसी को नहीं है, बुद्धि तो बुद्धिमान, बुद्धिमानों का जो बाप है उसी को बुद्धि है। नहीं, वो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े साहूकार हैं, वो सब किसी न किसी के कंट्रोल में हैं या नहीं है, उनके ऊपर कोई डंडा है या नहीं है? डंडा चला रहा है उनको। जो डंडा चला रहा है वो देहधारी है या भगवान है निराकार? देहधारी। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा जो है वो किससे डरते थे? अपना सब कुछ उन्होंने किसको सौंप दिया? सभी गुरुओं से उनकी श्रद्धा हट गई। और डरते किससे थे? हैं? शिव बाबा जानते भी थे, पार्टनर से डरते थे। डरते तो थे पार्टनर से, उनके अंडर में भी चलते थे। वो जो कुछ बता दिया उसके ऊपर उनको विश्वास भी हो गया, लेकिन ये विश्वास नहीं रहा अंत तक कि इनमें शिव भगवान प्रवेश होकर के ये बातें बताइए।
बाप की पहचान नहीं,
बाप की पहचान नहीं हुई, ये अंतर पड़ गया। और मरते दम तक भी बाप की पहचान नहीं रही।
अभी भी नहीं,
अभी भी। गीता का भगवान कौन किसको समझते हैं? गीता का साकार भगवान कृष्ण ही है, कृष्ण की आत्मा ये बुद्धि में बैठा हुआ है। तो मुख्य बात है मत्स्यावतार की बात, कच्छा अवतार की बात हो रही थी। कछुआ जो है उसकी पीठ बड़ी मजबूत होती है, तो उनकी पीठ पर, किसकी पीठ पर? कछुआ की पीठ पर किसका हाथ था? रावण वाली आत्मा का, रावण वाली आत्मा का हाथ था। कौन वो रावण वाली आत्मा? नहीं, ब्रह्मा बाबा विश्व किशोर के द्वारा सारा कार्य कराते थे पहले। जब विश्व किशोर ने शरीर छोड़ दिया तो जगदीश भाई आए और उन ज्ञान का सारा कारोबार किसके ऊपर सौंप दिया? जगदीश भाई के ऊपर सौंप दिया। ब्रह्मा बाबा का हाथ था उनके ऊपर, इसलिए उनकी पीठ मजबूत हो गई। ब्रह्मा बाबा भी कोई हस्ती है या नहीं है? हस्ती तो है, जबरदस्त हस्ती है, त्रिमूर्तियों में एक हस्ती है, नाम है। तो पीठ बहुत मजबूत थी। कितनी मजबूत पीठ कि कितने भी ज्ञान के डंडे पड़े लेकिन वो हिलने डुलने वाले नहीं थे। तो देखो कच्छ की पूजा करते हैं, मत्स्य की पूजा करते रहे। मत्स्य माने मछली, माछला। माछला की पूजा कैसे? कैसे? बाबा ने कहा तुम पूजा करते हो मच्छों की, कच्छों की। तो जगदीश भाई को बेसिक में मानते थे कि नहीं मानते थे? हैं? नहीं मानते थे? मानते थे। और मत्स्य की, मत्स्य अवतार कैसे? छोटी छोटी मछली, छोटी मछली हो या बड़ी मछली है तो मत्स्य, मत्स्य माने मछली। अरे वही मत्स्य अवतार जिसके ऊपर गंगा जी सवार करती है, सवारी करती है, मगरमच्छ। हाँ, जो यूपी में बहुत होता है गंगा में। अरे मत्स्य अवतार किसका अवतार है ब्राह्मणों की दुनिया में? हाँ, वो दिखाते हैं छोटी सी मछली पकड़ी, फिर वो बड़ी हो गई, बढ़ते 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 सारे सागर को। ऐसी जैसे सागर बड़ा है ऐसे मछली भी बड़ी हो गई। कितनी बड़ी हो जाती है? इतनी बड़ी हो जाती है कि सारी दुनिया को हप कर लेती। राज करेगा खालसा, इतनी बड़ी हो जाती, उसके अंडर में तुम चलते रहे, पूजा करते रहे, करते रहे कि नहीं है? नहीं, मत्स्य की, मछले की नहीं पूजा की है? मच्छ माने मछली की पूजा करते रहे, गंगा जिसके ऊपर सवारी करती है उस माछले की, मगर मच्छे की तुम पूजा करते रहे। अरे मगर मच्छे का घर कौन से एरिया में होता है, है? जहाँ गंगा नदी है वहाँ मगरमच्छ होते हैं, गंगा नदी में, है? हाँ जी, यूपी साइड में। नहीं समझ में आया अभी कौन है, है? हाँ, उसके अंडर में चलते रहे कि नहीं, पूजा नहीं करते रहे? आज भी करते हैं तो। अब तो वो महाकाली का रूप धारण करने वाली है, तब तो महाकाली के गाल में चले जाओगे। हाँ लिखते तो है, लिखने का मतलब ये थोड़ा ही है कि वो भगवान है, हैं? हाँ, जगत पिता ने उसका सहारा लिया, इतने ढेर के ढेर बच्चे पैदा हुए तो जिसका सहारा लिया उसके बारे में हमें भावना तो रखनी है, पूजा करना अलग बात और भावना रखना अलग बात। तो देखो मच्छों की भी पूजा करते हो, मच्छों को भी जाकर के राम राम कह करके आटे में गोली बना करके मच्छों को खिलाते हो, मछलियों को आटे में गोली बनाते कि नहीं है? हाँ, छोटी छोटी गोली बना करके मछलियों को खिलाते हो, पूजा करके उनको बैठ करके खिलाते हो, क्या वो बैठेंगे? वो मच्छी खाएगी तो उनमें राम राम का वो आ जाएगा, क्या याद की ताकत? मच्छी खाएगी तो उसमें जो राम राम कह के आटे की गोलियां डाली हैं उसमें कौन सी ताकत आ जाएगी? राम नाम की ताकत आ जाएगी। बाबा ने नाम नहीं बताया, वो असर आ जाएगा या क्या होगा? यानी बेसमझी अनेक प्रकार की बच्चों। तो बोलते हैं तुमने बहुत मेहनत की है भक्ति मार्ग में, प्यार से कहते हैं ना मीठे बच्चे, एक तो तुम विषय वैतरणी नदी में गोता खाया है और खाते हुए तुम देवताओं के लिए कहते आते हो कि वो निर्विकारी है, अभी तुमको ये पता ही नहीं पड़ा है कि हम ही पूजित थे, हम ही पुजारी बने, हम ही स्वर्ग के मालिक थे, हम ही नरक के मालिक बने हैं, ये कोई को भी पता नहीं है। गाते हैं जबकि आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, तो भगवान के लिए कह देते हैं ना अधूरी मुरली।